पाठ 15 अध्याय 13 और 14। गिनती अध्याय 13 और 14 वास्तव में एक ही लंबी कहानी है। हमें संभवतः उन्हें एक के बाद एक पढ़ना चाहिए, लेकिन वे दोनों ही काफी लंबे हैं, इसलिए हम 13 को पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और फिर 14 को पढ़ेंगे। आइए याद करें कि अध्याय 12 हारून और मरियम द्वारा मूसा के खिलाफ शिकायत करने की घटना के साथ समाप्त होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि मरियम को झाराट नामक त्वचा रोग हो गया, जो ईश्वर द्वारा उस पर सीधे ईश्वरीय निर्णय के रूप में किया गया था, और मरियम के सम्मान के कारण इसराइल के पूरे शिविर ने झराट से 7 दिवसीय शुद्धिकरण अवधि के दौरान प्रतीक्षा करने आगे बढ़ने के बजाय का फैसला किया, जिसमें उसे शिविर से बाहर रखा गया था और वह किसी के संपर्क में नहीं आ सकती थी। शुद्धिकरण अवधि बीत जाने के बाद इसराइली पारान रेगिस्तान के क्षेत्र में चले गए। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि गिनती 13 और 14 में जो कुछ भी होगा वह तब होगा जब वे कादेश में डेरा डाले हुए होंगे, जिसे कादेश बरने भी कहा जाता है, जिसे ईन मिशपत भी कहा जाता है। यह रेगिस्तान के किनारे पर कनान की भूमि की दक्षिणी सीमा पर एक विशाल और हरा भरा नखलिस्तान है।
गिनती अध्याय 13 पूरा पर है।
प्रभु के विरुद्ध विद्रोह की भयावहता और यहां वर्णित तबाही को कम करके आंकना कठिन है, और जैसे जैसे हम अध्याय 14 में प्रवेश करेंगे हम देखेंगे कि इसके परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। यूसुफ की कहानी की तरह यहां एक पैटर्न और प्रकार स्थापित किया गया है जो एक साथ सत्य और ऐतिहासिक है, जिसका अर्थ और मार्मिकता अपने आप में है, साथ ही यह भविष्यवाणी और रूपक भी है, एक प्रकार जो कई तरीकों से न केवल बाद के युगों में इसराइलियों द्वारा बल्कि चर्च द्वारा भी दोहराया जाएगा।
यहां हम जो देख रहे हैं वह यदि यह कोई उपन्यास होता एक ऐसी घटना से कम नहीं है जिसे हम इसराइल का पहला पतन कह सकते हैं, जो विजय और समृद्धि के बारे में एक अद्भुत कहानी होनी चाहिए थी। इसराइल द्वारा भूमि और उन सभी अच्छाइयों को विरासत में प्राप्त करने की कहानी जो प्रभु ने उनके लिए तैयार की थी, इसके बजाय अविश्वास, विफलता, कमजोरी और ईश्वर की कृपा के प्रत्यक्ष खंडन के बारे में एक दुखद कथा में बदल जाती है। इसके प्रभाव में यह कहानी आदम और हव्वा और मनुष्य के पतन से बिल्कुल अलग नहीं है। आदम और हव्वा को गुरु कुम्हार द्वारा बनाया गया था, वे अपनी बुरी प्रवृत्तियों के आगे झुक गए और अनुग्रह से गिर गए। हमारी कहानी में इसराइल को कुछ ही दिन और सप्ताह पहले प्रभु द्वारा पवित्र किया गया था, उन्हें उनका तोरा दिया गया था और वे यहोवा की निरंतर उपस्थिति में आनंद ले रहे थे, लेकिन अब वे अपने डर और इच्छाओं का पालन करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। इसलिए कृपया समझें कि हम मानव जाति की कहानी इतिहास बदलने वाले उन क्षणों में से एक के बारे में पढ़ रहे हैं। इसराइल सदियों के वादे को पूरा करने के कगार तक पहुंच गया था और फिर उन्होंने हार मान ली। जैसे ही जीत उनके हाथ में आई वे डर के मारे पीछे हट गए। वे पीछे हट गए और उस वादे में शामिल होने से इनकार कर दिया। ओह, हम सब उस क्षण तक कितनी धार पर जी रहे थे जब तक हमने परमेश्वर के मसीहा को स्वीकार नहीं कर लिया, और हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हम किस खतरे में थे।
हमारा वृत्तांत यहोवा द्वारा मूसा को कनान देश की खोज करने के लिए लोगों के एक समूह को भेजने के निर्देश से शुरू होता है, और उस समूह में इसराइल के 12 गोत्रों में से प्रत्येक से केवल एक व्यक्ति शामिल होना था। हालांकि तुरंत ही हम एक शास्त्रीय दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि बाद में व्यवस्था विवरण में हमें यह बताया गया है, व्यवस्था विवरण 1:22, तब तुम सब मेरे पास आए और कहा, हम अपने आगे लोगों को भेजें जो हमारे लिए देश की खोज करें और हमें यह संदेश दें कि हमें किस मार्ग से जाना चाहिए और किन शहरों में प्रवेश करना चाहिए। 23, और यह बात मुझे अच्छी लगी और मैंने तुम्हारे 12 लोगों को चुना, प्रत्येक गोत्र के लिए एक आदमी।
क्या आप दुविधा को समझते हैं? गिनती 13 में कहा गया है कि परमेश्वर ने मूसा से जासूस भेजने को कहा था, लेकिन व्यवस्था विवरण 1 में कहा गया है कि इसराइल के लोग मूसा के पास गए
और कहा कि वे जासूस भेजना चाहते हैं, और मूसा ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, इसलिए उसने 12 लोगों को चुना। हमें इस बारे में क्या सोचना चाहिए?
रब्बी के लेखन के अनुसार उत्तर गिनती 13 पद 1 में प्रयुक्त एक मुख्य इब्रानी शब्द में निहित है, भेजे के लिए इब्रानी शब्द। इब्रानी में यह शब्द शेलह लेखा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अपने लिए भेजें। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मूसा से कह रहा है, यदि तुम कुछ जासूस भेजना चाहते हो तो तुम्हें मेरी अनुमति है। पद 1 में हम जो देखते हैं वह यह नहीं है कि परमेश्वर अपने स्वयं के आवेग में अचानक कह रहा है, अरे मूसा एक मिनट यहाँ आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ जासूस भेजो, बल्कि यह है कि परमेश्वर मूसा के अनुरोध का जवाब दे रहा था और मूसा मामले को प्रभु के पास ले जाकर लोगों के अनुरोध का जवाब दे रहा था। इसलिए यहोवा मूसा से कहता है कि वह आगे बढ़े और इन जासूसों को भेजकर खुद को और लोगों के अनुरोध को संतुष्ट करे। आखिरकार परमेश्वर जानता था कि कनान देश में क्या था। ये इज़राइल के लोग अनिश्चितता में थे। आइए एक बात पर स्पष्ट हो जाए, जासूसी और टोही में अंतर है। कुछ बाइबल संस्करणों में कहा गया है कि 12 लोग टोही कर रहे थे जबकि अन्य जासूसी कर रहे थे। यह कुछ हद तक दुकानों में चोरी और खरीदारी के बीच के अंतर जैसा है। गिनती में जो निर्देश दिया गया था वह था लोगों को आश्वस्त करने के लिए बाहर जाकर भूमि को देखना। यह एक घर खरीदने के लिए एक नए समुदाय की खोज करने जैसा था, न कि किसी सैन्य अभियान की प्रारंभिक तैयारी जैसा। और अगर यह एक सैन्य अभियान होता तो निश्चित रूप से गोत्रों के नेता नहीं जाते और उन्होंने 12 लोगों को नहीं भेजा होता। 2 या 3 अधिक उपयुक्त होते, क्योंकि छिपकर काम करना महत्वपूर्ण होता। और बाद में बाइबल में जब हम वास्तविक सैन्य जासूसी देखते हैं तो वास्तव में आमतौर पर अधिकतम 2 या 3 लोग होते हैं। अब इस मिशन के लिए चुने गए नेता बहुत उच्च नेता हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे प्रत्येक गोत्र के राजकुमार या प्रमुख हों। लेकिन ध्यान दें कि एक गोत्र है जो पूरी तरह से मिश्रण से बाहर रह गई है, लेवी। यह इस बात की ओर पुष्टि है कि लेवी के पुजारी गोत्र और इसराइल के अन्य गोत्रों के बीच विभाजन पूर्ण था, इतना पूर्ण कि लेवी को अब इसराइल के सामान्य भाग के रूप में संदर्भित नहीं किया गया। पद 16 में हमें यह रोचक बात मिलती है कि एक आदिवासी नेता का नाम मूसा ने बदल दिया था होशे नून का बेटा। होशे को जोशुआ के नाम से जाना गया, या इब्रानी में अधिक सटीक रूप से यहोशु। तो होशे और यहोशु में क्या अंतर है? खैर, कुछ मायनों में यह काफी आश्चर्यजनक है। होशे का मतलब है ईश्वर बचाता है, यहोशु का मतलब है यहोवे बचाता है। नाम बदलने का एक कारण यह भी है कि होशे का जन्म मिस्र में हुआ था, जाहिर है कि निर्गमन से बहुत पहले। निर्गमन की पुस्तक में हमने जो सीखा वह यह था कि ईश्वर ने अपना व्यक्तिगत नाम प्रकट नहीं किया था, यहोवे था बाद में, जब उन्होंने इसे माउंट सिनाई पर मूसा को दिया। इसलिए जोशुआ यहोशु नाम तब अस्तित्व में नहीं हो सकता था जब इसराइल मिस्र में, क्योंकि ईश्वर का नाम अभी तक ज्ञात भी नहीं था। और बेशक हमारे उद्धारकर्ता का दिया गया इब्रानी नाम यीशुआ था, जो यहोशुआ का संक्षिप्त रूप है, यहोवा बचाता है। जीसस, जोशुआ, यहोशुआ और यीशुआ सभी एक ही नाम है, बस अलग अलग बोलियों और भाषाओं में, अलग अलग युगों से। और यहोशु की किताब को देखते हुए यहोशु यहोशु होगा और मूसा नहीं, जो लोगों को वादा किए गए देश में ले जाएगा। मूसा उन्हें वहां तक ले जाता है, लेकिन वहां नहीं, सीधे समानांतर में मूसा का तोरह लोगों को अंतिम वादा किए गए देश तक ले जाता है, लेकिन वहां नहीं। इसके लिए यीशुआ, यीशु मसीह की जरूरत थी।
मूसा ने 12 लोगों के समूह को नेगेव, एक बंजर रेगिस्तान से होते हुए पहाड़ी इलाके में जाने का निर्देश दिया। संक्षेप में, वे वास्तव में नेगेव की खोज नहीं कर रहे थे, क्योंकि यह केवल एक जगह थी जिससे होकर उन्हें अपने लक्ष्य पहाड़ी इलाका तक पहुंचने के लिए जाना था, या वास्तव में यह हेब्रोन के आसपास के सामान्य क्षेत्र को इंगित कर रहा है। और उनका मिशन कई चीजों को निर्धारित करना है, जैसा कि पद 18-20 में संदर्भित है। तो आइए गिनती 13 का 18-20 को फिर से पढ़ें।
गिनती 13 का 18 से 20 दोबारा पढ़ें। इसीलिए मंडली के लोगों की जांच करनी थी, भूमि की जांच करनी थी, शहरों की जांच करनी थी, यह देखना था कि क्या वहां जंगली क्षेत्र हैं और यह देखना था कि मिट्टी में चीजें कितनी अच्छी तरह उगती हैं।
अधिकांश महान इब्रानी संत इस बात पर सहमत हैं कि यह सब जलवायु, मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता या नहीं जैसी चीजों के बारे में था। जहां तक मूसा का सवाल है, कनान के लोग भयंकर योद्धा थे या नहीं, यह वास्तव में मुद्दा नहीं था। हालांकि किसी भी परिस्थिति में यह जानना जरूरी था। आखिरकार किसी भी परिस्थिति में कनान के लोग रोमांचित नहीं होने वाले थे जब 3 मिलियन इब्रानी बेदखली नोटिस लेकर आए। और हमें वह मौसम बताया गया जिसमें यह स्काउटिंग मिशन हुआ, अंगूर के पहले पकने का समय, जिसका मतलब है कि यह गर्मियों में था, जुलाई अगस्त के समय में। नेगेव से गुजरते समय बहुत गर्मी पड़ने वाली थी, इसलिए पद 21 में वे चले गए और उन्होंने उस जगह को देखा और यह एक बड़ी जगह थी। उन्होंने निचले रेगिस्तान से होते हुए एक मार्ग लिया और फिर हेब्रोन में चले गए और फिर अंततः वे लेबो हमात नामक जगह तक पहुंच गए। उस जगह के सटीक स्थान पर कुछ असहमति है, लेकिन निश्चित रूप से यह उत्तर की ओर था। यहां तक कि जिसे अंततः सीरिया और लेबनान कहा जाएगा, एक ऐसा क्षेत्र जो वास्तव में राजा दाऊद और सोलोमन होगा, इसराइल का एक आधिकारिक हिस्सा कादेश से लेबो हमात तक की दूरी शायद 200 मील थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें वहां जाने और वापस आने में 40 दिन लगे। अब हेब्रोन एक गंतव्य क्यों था? सरल, अब्राहम को वहीं दफनाया गया था। यह हेब्रोन ही था जहां अब्राहम को पहली बार भूमि देने का वादा किया गया था। हेब्रोन वह जगह थी जहां अब्राहम ने कनान की भूमि में किसी हद तक पहली बार बसने का फैसला किया था और यह एक हद तक सभी कुलपिताओं का निवास स्थान था। यह सुंदर और उपजाऊ था, चारागाह और फसलों के लिए अच्छा था। हेब्रोन उनके वहां रहने के पहले कुछ वर्षों के लिए इसराइल की अनाम राजधानी होगी। इस जगह के इब्रानी इतिहास के कारण यह इसराइलियों के लिए एक पवित्र स्थान भी था।
और आयतों में कहा गया है कि रास्ते में मंडली दल को अनाकवंशी नामक 3 आदमी मिले। अनाकाइट्स वास्तव में कौन या क्या थे, यह अनिश्चित है। एक बात जो हम जानते हैं वह यह है कि वे लंबे लोगों की एक जाति थे और उनकी तुलना उत्पत्ति में बाढ़ से पहले वर्णित नेफिली और रेफाइम से की गई थी। याद करें कि नेफिली और रेफाइम एक ऐसी जाति थी जिसके बारे में शास्त्र कहता है कि यह तब उत्पन्न हुई जब स्वर्ग के पुत्रों ने पुरुषों की बेटियों के साथ संभोग किया। दूसरे शब्दों में, देवदूत जैसे प्राणियों ने मानव महिलाओं के साथ संबंध बनाए और इसका परिणाम बड़े, मजबूत, भयंकर, बुरे लोगों की एक पंक्ति थी। अब क्या अनाकाइट्स नफिली का नवीनतम संस्करण थे या उन्हें सिर्फ बयानबाजी में नेफलिम से तुलना की जा रही थी, पता लगाना मुश्किल है। गोलियत, दाऊद द्वारा मारा गया विशाल योद्धा, एक अनाकवंशी या इब्रानी में अनाकिम था। किसी भी मामले में इन अनाकवंशी ने 12 मंडली पर काफी प्रभाव डाला।
फिर किसी कारण से पवित्र शास्त्र हमें यह बताने के लिए रुकता है कि हेब्रोन की स्थापना 7 साल पहले हुई थी। इस बात को लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं कि यह बात क्यों उठाई गई, लेकिन एक बात जो अब पता चली है वह यह है कि सोन को बाद में मिस्र का तानिस कहा जाएगा और तानिस को मिस्र की राजधानी लगभग उसी समय बनाया गया था जब राजा दाऊद ने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी बनाया था। इसके बाद वे एशकोल नामक स्थान पर जाते हैं और वहां बहुत बड़े आकार के अंगूर पाते हैं, इतने बड़े कि एक गुच्छे को ले जाने के लिए 2 डंडों के बीच में लटकाना पड़ता है। यह वास्तविक नहीं है, यह भूमि की अत्यधिक उपजाऊपन को समझाने के लिए एक रूपक है। यह हमारी कहावत से अलग नहीं है कि हमें घर के आकार का तरबूज मिला। हमारी संस्कृति में कोई भी इसका मतलब यह नहीं लेगा कि तरबूज 30 फीट के आसपास था। यह सिर्फ एक आधुनिक कहावत है जो बताती है कि यह असामान्य रूप से बड़ा था। यहां भी यही बात हो रही है। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि एशकोल शब्द का अर्थ है गुच्छा, अंगूरों के गुच्छे की तरह। यह अंगूर उगाने वाला क्षेत्र था, इसलिए चीजों को अंगूर नाम दिए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि बाइबल में जगह के नाम और कहानियां आपस में कैसे झुरी हुई हैं, और कभी कभी यह जानना मुश्किल होता है कि पहले क्या आया कहानी या जगह का नाम। दूसरे शब्दों में, क्या उस जगह का नाम वहां हुई किसी घटना के नाम पर रखा गया था, या किसी जगह के नाम के इर्द गिर्द कोई कहानी विकसित हुई थी। याद रखें, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वह सदियों से मौखिक रूप से हमें दिया गया है, इसलिए कहानियों को याद रखने और सुनाने में आसान बनाने के लिए कई साहित्यिक और ध्वन्यात्मक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। अगर हम इब्रानी को बेहतर जानते तो हम देख पाते कि बाइबल की कई आयतें तुकबंदी करती हैं फिर से, क्योंकि इन्हें मूल रूप से मौखिक रूप से सौंपे जाने के तरीके से बनाया गया था। और जैसे बच्चों को कुछ तथ्यों को याद रखने के लिए गाने सिखाए जाते हैं, वैसे ही प्राचीन लोक कहानियों को सुनाने में तुकबंदी, कविताएं और असामान्य शब्द संरचनाओं का इस्तेमाल करते थे। वैसे भी ये आदिवासी नेता लगभग 6 सप्ताह बाद वापस आते हैं और वे सीधे मूसा और हारून के पास जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। वे पहले मूसा को बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा और फिर इसराइल के पूरे समुदाय को बताते हैं। इसका मतलब सभी इसराइलियों से नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इसराइल के बुजुर्गों और नेताओं से है, और हमें इन मंडली की प्रवृत्ति का थोड़ा सा संकेत पाने से पहले बहुत दूर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं, हम उस देश में आए जहां आपने हमें भेजा था। वह देश नहीं जिसका वादा प्रभु ने किया था, या वह देश नहीं जिसकी शपथ अब्राहम को दी गई थी। दूसरे शब्दों में, उन्होंने खुद को वादे से, वाचा से और परमेश्वर से अलग कर लिया। उनके लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक आर्थिक मामला था।
और अपनी रिपोर्ट के पहले भाग में मंडली का समूह बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वे कहते हैं, ये दूध और शहद से बहने वाली भूमि है, और ये मूसा के निर्देश के जवाब में है, क्योंकि वे ये निर्धारित करने के लिए अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार थे कि भूमि उपजाऊ है या नहीं, और वे मूसा को वे फल भी दिखाते हैं जो वे वापस लाए थे। यह इस सवाल के जवाब में है कि क्या भूमि वनाच्छादित थी, अर्थात क्या ये बड़े पौधों को सहारा देती थी, न कि केवल झाड़ियां। वैसे लेकिन कनान के लोगों की ताकत के बारे में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे शक्तिशाली थे, शहरों के लिए वे बड़े और अच्छी तरह से संरक्षित थे, और वैसे यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। खुदाई किए गए दीवार वाले कनान के शहरों की अधिकांश दीवारें औसतन 30 से 50 फीट ऊंची और 10 से 15 फीट मोटी पाई गई हैं। मंडली का यह भी कहना है कि लंबे लोग, अनाकवंशी वहां मौजूद हैं, और अमेलेकाइट्स, जिन्हें कनान और सिनाई के रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्रमुख लोग, भटकने वाले माना जाता है, वे भी बड़ी गिनती में वहां थे। हित्ती, एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता जिसका केंद्र आधुनिक तुर्की में है, जेबुसाइट, यरूशलेम शहर के मूल निर्माता, और एमोराइट्स, संभवतः अब्राहम की मूल गोत्र, एक बहुत ही उग्र समूह जो शक्ति और प्रभुत्व चाहता था और हमेशा अपने पड़ोसियों को परेशान करता था। कनानी लोग, नूह के पोते कनान की कई संतानों का एक समूह जो देश के तटीय मैदानों में रहता था, ये सभी समूह वहां थे और अच्छी तरह से जमे हुए थे, और निस्संदेह उन्हें अपने शहर राज्यों को इन इब्रानियों को सौंपने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
आइए एक बात समझें, मंडली का मूल्यांकन संतुलित था और अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। वे सच बोल रहे थे, और सच ने इसराइल के नेताओं और बुजुर्गों को डरा दिया जो विस्तृत मूल्यांकन दस्तावेज सुनने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठे हुए थे। हम आसानी से लोगों की चिंता और भय व्यक्त करने की बढ़ती हुई आवाज की कल्पना कर सकते हैं, शिकायत और विद्रोह का बढ़ता शोर, क्योंकि पद 30 कहता है, कालेब ने लोगों को चुप करा दिया, कालेब ने उन्हें शांत होने और शांत होने के लिए कहा, और कालेब कहता है, ठीक है, बहुत हो गया सच। हम जानते हैं कि हम किससे जूझ रहे हैं, अब चलो और जमीन पर कब्जा करें, क्योंकि निश्चित रूप से हम इन सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। यह वही निष्कर्ष नहीं है जिस पर सुनने वाले लोग पहले ही पहुंच चुके थे। अन्य मंडली और बुजुर्गों ने फैसला किया था कि कनान के इन भयंकर लोगों से मुकाबला करना
आत्महत्या के समान था। अपनी बात रखने के लिए उन्होंने अपनी संतुलित रिपोर्ट को छोड़ दिया और कहा कि अनाकवंशी इतने बड़े हैं कि हम उनके बगल में टिड्डे की तरह लग रहे थे। उनके अनुमान में यह एक निराशाजनक स्थिति थी। लेकिन समस्या यही है, मंडली और प्राचीन मूसा के खिलाफ नहीं बल्कि यहोवा के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। परमेश्वर के वचन को मानने से इनकार करना उनकी पवित्रता का सबसे बड़ा अपमान था और इसके गंभीर परिणाम होंगे। साथी विश्वासियों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें प्रभु की बात सुनने की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर, और जैसा कि 12 मंडली के मामले में हुआ, परमेश्वर के खिलाफ हमारा विद्रोह यह है कि हम वे काम नहीं करते जो हमें स्पष्ट रूप से करने चाहिए। इसके बजाय हम बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनसे दूर देखते हैं और डर जाते हैं और अधीर हो जाते हैं। हम सोचते हैं अगर यह मुश्किल और खतरनाक है तो निश्चित रूप से यह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर ने यह सौदा तय किया है तो यह आसान और बिना किसी समस्या के होने वाला है। अगर हम समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं और यह वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था, तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं। इस तरह की सोच ने शायद किसी भी अन्य की तुलना में व्यक्तिगत विश्वासियों और ईसाइयों के समूहों से अधिक आशीर्वाद और जीत छीन ली है। यह एक गलत धारणा है। मैं आपके लिए 12 मंडली की इस कहानी के बारे में एक समानांतर रेखा खींचना चाहूंगा जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा। ये एक बहुत ही समकालीन समानांतर रेखा है और इसका हम चर्च पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ने वाला है।
परमेश्वर ने अपने लोगों इज़राइल को वादा किए गए देश में पहुंचाया था, लेकिन 10 लोगों, विश्वसनीय और सम्मानित नेताओं ने परमेश्वर के लोगों को वादा किए गए देश में प्रवेश करने से रोकने का फैसला किया। इन लोगों ने वही किया जो कोई भी अच्छा नेता करता, जांच पड़ताल, मूल्यांकन और फिर बिना किसी भावना के एक ईमानदार और व्यावहारिक निष्कर्ष पर पहुंचना। 10 नेता जिनके पास विश्वास और भरोसा नहीं था लेकिन जिनके पास अधिकार था, उन्होंने 3 मिलियन इसराइलियों जो नेतृत्व के लिए उनकी ओर देखते थे को उनकी परमेश्वर निर्धारित विरासत से वंचित कर दिया। और आज चर्च के भीतर कई लोग हमें मसीहा से परिचित कराने के लिए इतनी लगन और प्रभावी ढंग से काम करके वही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके और इस तरह हमारे अपने लोगों, यहूदियों और उसकी अपनी भूमि इज़राइल के साथ उसके संबंध को नकार रहे हैं।
कौन बाइबल में एक भी ऐसा शब्द ढूंढ सकता है जो परमेश्वर की अक्सर कही गई वाचा को निरस्त करता हो कि कनान की भूमि उसके लोगों इज़राइल की है? हमें एक भी कथन कहां मिलता है जो कहता हो कि विश्व शांति और मानवता के लिए इज़राइल को अपनी पवित्र भूमि विरासत का कुछ हिस्सा, यदि नहीं तो पूरा, छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? फिर भी आज चर्च का कम से कम आधा हिस्सा इज़राइल के दुश्मनों और भूमि के मामले में उनका पक्ष लेता है। पूरे संप्रदायों ने खुले तौर पर इज़राइल के उस भूमि पर अधिकार की निंदा की है जिसका परमेश्वर के वचन में विस्तार से वर्णन किया गया है। इज़राइल के पक्षधर आधे लोगों का मानना है कि उस भूमि का कम से कम कुछ हिस्सा बांटकर उन गरीब फिलिस्तीनियों को दे देना ही उचित है। आखिर क्या यह यीशु द्वारा हमें सिखाया गया सरल प्रेम और न्याय नहीं है? और अगर हम फिलिस्तीनियों से प्रेम करते हैं तो एकमात्र संभव प्रतिक्रिया यह है कि वादा किए गए देश का कुछ हिस्सा काट लें और इसराइल को उसे उनके अपने राष्ट्र के लिए देने के लिए मजबूर करें। जो लोग अपने लोगों इसराइल को अपनी भूमि विरासत का दावा करने के लिए परमेश्वर की योजना को विफल करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए परिणाम गंभीर हैं। उन 12 मंडली में से 10 यह पता लगाने वाले थे कि परमेश्वर अपनी वाचाओं, अपनी आज्ञाओं और अपने लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को कितनी गंभीरता से लेता है ताकि वे प्रतिज्ञा की भूमि में अपना स्थान ग्रहण कर सकें। आज चर्च यह भी पता लगाने वाला है कि प्रभु परमेश्वर बदलता नहीं है और वह बेकार की धमकियां नहीं देता है, और वह अब्राहम के माध्यम से बनाए गए अलग अलग राष्ट्र से अपने वादे से पीछे नहीं हटा है। आइए अध्याय 14 पर चलते हैं।
गिनती अध्याय 14,
गिनती अध्याय 14 पर हैं 1 से 12।
पद 1 में सब कुछ अच्छी तरह से बताया गया है। पूरा समुदाय जोर जोर से रोने लगा और लोग उस रात रोते रहे, यानी बुजुर्ग और नेता चिल्लाने लगे, चीखने लगे और झगड़ा करने लगे, और जो कुछ हो रहा था उसे देखकर लोग एक बड़े आतंक के हमले में टूट गए। इसराइल का समुदाय मूसा और हारून के खिलाफ और इसलिए परमेश्वर के खिलाफ एकजुट था। बुद्धिमानों के लिए नोट है, आप एक तरफ परमेश्वर के मध्यस्थ के खिलाफ नहीं हो सकते और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के पक्ष में हैं। तब उनके दिलों में जो निंदा थी वह उनके मुंह से निकल पड़ी, काश हम मिस्र में ही रह गए होते। अनुवाद: हम अपने भूतपूर्व दुष्ट कार्यपालकों की गुलामी को प्रभु से मुक्ति के बजाय ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गुलामी ज्यादा आरामदायक और परिचित थी और ऐसा लगता था कि इसके अपने फायदे हैं। वे पूछते हैं, हे परमेश्वर, तूने हमें कनानियों द्वारा वध किए जाने के लिए यहां क्यों लाया है? क्या तू हमसे घृणा करता है? अब हम सभी में यह सुनने और इन इसराइलियों के प्रति घृणा में अपने सिर हिलाने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन क्या हम सभी ने प्रभु के साथ अपने चलने में समय समय पर ऐसा ही नहीं किया है? क्या हम सभी ने चुनौती पूर्ण क्षण के दौरान ऊपर देखकर यह नहीं कहा है, हे परमेश्वर, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? और समस्या के लिए बुजुर्गों का समाधान वही है जिसकी उम्मीद की जा सकती है। चलो एक अलग नेता नियुक्त करें और मिस्र वापस चले जाएं। चलो गुलामी और कैद में वापस चले जाएं। कम से कम हम बेहतर खाना खाते थे, कम से कम हमारे पास रहने के लिए घर थे और हमें लड़ने और अपने जीवन को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। क्या मनुष्य अजीब प्राणी नहीं है? हम कितनी जल्दी अपने पिछले जीवन के दर्द और पीड़ा को भूल जाते हैं परमेश्वर के सामने अपने जीवन को, और हम कुछ समय के लिए इससे बचने के बाद भी और अधिक के लिए वापस चले जाते हैं। यह सच्चाई पुरुषों के बीच इतनी प्रचलित है कि हमारे आत्मविनाशकारी मानवीय प्रवृत्तियों के बारे में हमें चेतावनी देने और याद दिलाने के लिए नीति वचन लिखे गए हैं। कई साल पहले जब मैंने अपनी पत्नी से शादी की थी तो उसके पास कैलिफोर्निया में एक अच्छा घर था, और जब उसके एक दोस्त ने सुना कि वह उस घर से बाहर जा रही है तो उसने पूछा कि क्या वह उसे किराए पर देने पर विचार करेगी ताकि उसका इस्तेमाल दुर्व्यवहार की शिकार लड़कियों के लिए घर के रूप में किया जा सके। और ऐसा 15 साल से अधिक समय तक चलता रहा।
उस समय वहां कई दुर्व्यवहार की शिकार लड़कियां और स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ी गई कई भागी हुई लड़कियां, जिनमें से कई को सामाजिक सेवाओं द्वारा उनके दुर्व्यवहार करने वाले माता पिता से छुड़ाया गया था, रहती थीं। और पिछले कुछ वर्षों में हमारे मित्र और इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के साथ हमारी कुछ बातचीत में उन्होंने हमें अपनी सबसे बड़ी निराशा और हताशा के बारे में बताया कि इनमें से कई लड़कियां, जिनमें से कई को दुर्व्यवहार के कारण स्थायी चोटें और निशान थे, इस सुरक्षित घर से भाग जाती थीं और बेहतर जीवन के अवसर से दुर्व्यवहार वाले वातावरण में वापस चली जाती थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा वही करना था जो वे जानती थीं और जिसकी वे आदी थीं। उन्हें जो नया और बेहतर था उसे त्यागना था, जो परिचित और आरामदायक था।
विश्वासियों के रूप में हम यही करते हैं जब हम अपने उद्धार को स्वीकार करते हैं और फिर ऐसे जीते हैं जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं। परमेश्वर हमें वादा किए गए देश में ले आया और फिर हम डर गए और वापस संसार में भाग गए। और आमतौर पर हम सोचते हैं कि जब हम संसार में वापस जाने का चुनाव करते हैं तो हम परमेश्वर को अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? हम इस प्रश्न का उत्तर अगली बार मिलने पर देखेंगे।